ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है इस श्लोक। ओके, तो आज हम भीष्म स्तुति, ये जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से 41वें श्लोक, 10 श्लोक है, उन पर चर्चा करेंगे। तो मैं एक श्लोक का अर्थ और महत्व बताऊंगा, उसको हम दोहराएंगे, फिर दूसरे श्लोक पर जाएंगे। तो जितने श्लोक हो सकते हैं उनका हम उनका चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज। तो पहले इसकी पार्श्वभूमि हम थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, उसमें 335 अध्याय हैं। तो उसमें से 19 अध्याय पहले स्कंद में हैं। और वास्तव में जो भागवतम का शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इनमें जो संवाद है वो द्वितीय स्कंद से शुरू होता है। आखिरे 19वें अध्याय में पहले स्कंद के वहाँ पे शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होते हैं और उनको कुछ सवाल पूछते हैं और दूसरे स्कंद से शुरुआत होती है उन दोनों के वार्तालाप की। उसके पहले सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो जो अगले 11 स्कंदों में आने वाला है उसकी एक झलक भागवतम के पहले स्कंद में दी गई है। भागवतम का मूलभूत बात क्या हो रही है कि व्यक्ति की मृत्यु जब होने वाली है तो उसे किसकी चिंता करनी चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए। वह परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी उपदेश दे रहे, पर वही जो भाव है वह भागवतम के पहले स्कंद में 9वें अध्याय बताया जा रहा है। यहाँ पे भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग रहे हैं और उसके उस समय वो किस चेतना में है वह बहुत ही सुंदर रूप से इन श्लोकों में दर्शाया जाता है। तो ये जो प्रसंग है, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया है, महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया है और अभी तक भीष्म पितामह अपने शरीर उन्होंने त्यागा नहीं है, वो एक तीरों के बिस्तर पे लेटे हुए हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि के एक विभाग में। और उसके बाद में अभी युधिष्ठिर महाराज को लेकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे गए हैं और तभी भीष्म पितामह विस्तार रूप से उपदेश देते हैं। और उपदेश का जब अंत हो रहा है, राजधर्म नाम का उपदेश है, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत, बट उसके अंत में अभी क्या कर रहे हैं, वह अभी बोल रहे हैं कि मैंने अलग अलग विषयों पर बात की है, अभी मैं केवल भगवान पे अपना चित्त एकाग्रत करना चाहता हूँ। तो ये थोड़े लंबे श्लोक है, पर कृपया मेरे पीछे आप दोहराइए। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विधुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषियद्भव प्रवाह मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर हम ये श्लोक पुनः दोहराएंगे, फिर अगले श्लोक पर जाएंगे। तो श्री भीष्म पितामह कह रहे हैं इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। इति मति, मति मतलब चेतना, हम सब कृष्ण भावना कृष्ण चेतना में आना चाहते हैं। इति मतिर उपकल्पिता, जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ों का विचार करना पड़ता है, हमें हमारे परिवार का, हमारे आर्थिक परिस्थिति का, हमारे सेहत का, हमारे अलग अलग रिश्तेदारों का, इस तरह से हमारी चेतना होती है अलग अलग चीज़ों में चली जाती है। पर जब हम भगवान की भक्ति करनी है तो अगर हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें सोच रहे हैं तो उसमें हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। जब हम भगवान के सामने आ रहे हैं तो भगवान का चिंतन करना है। तो अभी क्या कर रहे हैं बिशप कहाँ बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने राजधर्म पे अलग अलग विषयों पे चर्चा की है, इति मतिर उपकल्पिता, मेरी जितना अलग अलग जगह पे जा रही है वितृष्णा, उसमें हमारी इच्छा होती है, हमारी विचारधारा होती है, हमारी दृढ़ संकल्प होता है। हमारे विचारों में तीन चीज़ होते हैं, किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं फिर सोचते हैं हाँ ये अच्छा है मुझे करना चाहिए और फिर हम करने जाते हैं। कभी कोई क्रिकेट मैच है तो हम सोचते हैं अच्छा क्रिकेट मैच वहाँ पे है, फिर सोचते अच्छी अच्छी मैच होगी देखने जाऊँगा मैं, और फिर हम निर्धार करते जाने का, थिंकिंग फीलिंग और विलिंग, विचार करना, इच्छा करना और फैसला करना, ये तीन चीज़ें हमारे अंदर के जगत का प्रवाह निर्धारित करती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं भीष्म पितामह, उपकल्पिता वितृष्णा, जो चेतना इधर उधर जा रही थी मैं क्या कर रहा हूँ उसको भी, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, विभूमि जो महान भगवान है उन पे मैं एकाग्र करता हूँ। और वह भगवान भी विशेष बात क्या है कि योगी लोग भगवान का एक झलक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना घर शहर परिवार सब कुछ छोड़ के जंगल में जाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, पर वही भगवान अभी अवतरित हुए हैं इस भौतिक जगत में। और वह भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, तो विहर्तुम विहार करने के लिए, लीला करने के लिए भगवान जो सदैव आध्यात्मिक जगत में लीला करते हैं स्वसुखम, कभी कभी अपने सुख के लिए अपने इच्छा के अनुसार, प्रकृति मुपेयूषी यद्भव प्रवाह, प्रकृति मुपेयूषी वे इस भौतिक प्रकृति में आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, भव प्रवाह, भव प्रवाह मतलब कि इस भौतिक जगत में प्रवाह चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि काल का प्रवाह चल रहा है और सब लोग इसमें फंसे हुए हैं। जब भगवान आते हैं तो ऐसे नहीं है कि सब लोग भगवान को समझ लेते हैं कि ये भगवान है। दुर्योधन जैसे लोग थे वो सोचते थे कृष्ण क्या है, एक यादव राजा है, थोड़ा और शक्तिशाली राजा है, बड़ा बुद्धिमान राजनीतिज्ञ है, पर मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं उसको हरा दूंगा। तो सब लोग भगवान को समझते नहीं हैं। अब यहाँ पे बताया गया स्वसुखम, भगवान अपने सुख के लिए आते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ या मेरे गुरु भगवान हैं, तो ऐसा जो भाव होता है यह शास्त्रों के विपरीत है, क्योंकि अगर कोई इसको पूछते हैं कि आप भगवान हैं तो फिर आपको बीमारी क्यों होती है, आप बूढ़े क्यों होते हो, भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, उनको बूढ़ा कभी नहीं होना होता है, उनको कभी कोई भी उनके इच्छा के अनुसार की विपरीत कुछ नहीं करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारी लीला है, मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ, मेरे दांत क्यों गिर रहे हैं, मेरा हाथ क्यों कांप रहा है, मुझे पैरालिसिस क्यों हो गया है, मेरी लीला हो रही है। वास्तव में ये लीला नहीं है, ये माया है। लीला मतलब क्या, स्वसुखम उपगते, जो खुद के सुख के लिए खुद के इच्छा के अनुसार स्वीकार की जाती है। तो भगवान एक छोटे बालक बन जाते हैं, अभी हम दामोदर लीला मना रहे हैं इस समय, सुंदर दामोदर भगवान का विग्रह है, तो उसमें क्या है, भगवान स्वयं की इच्छा से बन जाते हैं, भक्ति बद्धम, स्वेच्छा से भक्ति से बन जाते हैं। तो ये लीला नहीं है, भगवान स्वसुखम जो भी करते खुद के सुख के अनुसार करते हैं। तो भगवान आध्यात्मिक जगत में है, ये भौतिक जगत जो है यह एक अस्पताल के समान है, और अस्पताल में भगवान आते हैं किस लिए, वो सबको ठीक करने के लिए है, भव प्रवाह जो भव है उसको रोकने के लिए आते हैं। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर भगवान अच्छे हैं तो इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, इतने अमंगल कार्य, भूकंप होते हैं, ये होता है वो होता है, इतना सब अमंगल क्यों होता है। तो एक बार एक भक्त एक डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने देखा कि ये जो भक्त है यह व्यक्ति भक्त है, तो उन्हें पूछा उनसे कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हो, हाँ बेशक, दुनिया में देखो कितनी बीमारी है, कितनी गरीबी है, कितना दुख है, भगवान कैसे हो, अगर भगवान होते तो ये सब नहीं होता, भगवान जरूर नहीं है। तो फिर वो भक्त कुछ नहीं बोले और उनका काम वहाँ चले गए। कुछ समय के बाद तुरंत वहाँ पे आ गए और उनसे बोले कि इस शहर में कोई भी डॉक्टर नहीं है। क्या मतलब, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें अभी इलाज किया है, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे शहर, आओ मेरे साथ। उसको बाहर लेके गए तो उसके ही दवाखाने के बाहर एक रास्ते पे फुटपाथ पे एक भिखारी था और भिखारी वो खांस रहा था, जोरों से खांस रहा था। और तभी डॉक्टर से कहा, यह व्यक्ति बीमार है, यही सबूत है कि इस शहर में कोई डॉक्टर नहीं है। बोले क्या मूर्ख हो तुम, वह बीमार है इसलिए कि वो मेरे पास आ नहीं रहा है। तब भक्त बोले एग्जैक्टली, लोग दुखी इसलिए है कि वो भगवान के पास जा नहीं रहे हैं। अगर भगवान के पास जाते हैं, भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो फिर इस जगत में भी हमारे दुखों से हमें राहत मिलती है। कृष्णा इस शब्द के अनेक अर्थ है, कृष्णा कृष्ण का एक अनेक अर्थ है, एक अर्थ है सर्व आकर्षति इति कृष्ण, सबको आकर्षित करते हैं। दूसरा एक अर्थ है कृष्ण मतलब जो कर्षण करता है, जो बहुत बहुत जगह बहुत संसार का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र, न न मतलब उसको रोकना, तो जो जन्म मृत्यु के चक्र को रोकते हैं वे कृष्ण है। ससुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, क्वचित विहर्तुम, कभी कभी अपनी इच्छा से भगवान प्रकट हो जाते हैं लीला करने के लिए। प्रकृति मुपेशियत भव प्रवाह, और जो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं उनका भव बंधन बंद हो जाता है। तो एक और बार हम दोहराएंगे ये, फिर अगले श्लोक को जाएंगे। श्री भीष्म वाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम, उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह, प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाह। अगला श्लोक, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने, गौरवरांबरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम, पुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे न वद्या, सखे रतिरस्तु मे न वद्या। तो यहाँ पे भीष्म पितामह तीरों के बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बहुत वेदना में हैं, पर जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान के रूप का सौंदर्य का स्मरण होता है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल वर्ण, तमाल वर्ण मतलब तमाल का एक वृक्ष होता है, वह श्वेत भी नहीं होता है, श्याम भी नहीं होता है, थोड़ा उनके बीच में होता है वो, तो तमा भगवान का तमाल वर्ण है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका प्रचार करने गए तो उस समय अमेरिका और अफ्रीका इनमें थोड़ा ये सफ़ेद और काले लोगों का भेद हुआ करता था। तो फिर तभी कुछ लोगों ने पूछा उनसे कि क्या स्वामी जी, प्रभुपाद जी के एक शिष्य को पूछा उन्होंने, और प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे हयग्रीव प्रभु, वो एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, तो उनको पूछा कि आप एक विचित्र भगवान की पूजा करते हो, आपके तो बोले विचित्र क्या है, बोले कि आप एक तो आप एक काले भगवान की पूजा करते हो। बोले तो बोले हमारे भगवान काले नहीं है, वो नीले है। तो उनको सफेद और कालों का भेद था, वो बोले काले नहीं है, नीले है। और फिर वो बोले ठीक है, और बोले कि आपके भगवान करते क्या है। तो बोलते भगवान जो है, हमारे भगवान मक्खन चोर करते हैं, खंजोरी करते हैं। तो जब उन अभी उन पाश्चात्य धर्मों में संकल्पना है कि भगवान एक बड़े शक्तिशाली बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वो बादलों में रहते हैं और जो पापी लोग हैं उन पे वो बिजली की प्रहार करते हैं और उनको नरक में फेंक देते हैं और नरक में हमेशा के लोग जलते रहते हैं। तो ऐसी संकल्पना में भगवान एक नीले वर्ण के युवक है और वह माखन चोरी करते, ये जब सुना तो क्या हो गया, बहुत से लोगों का इंटेलेक्ट बौद्धिक शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ में कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? पर यहाँ पे क्या है, भगवान जब लीला करते हैं तो खुद की महिमा को ढक देते हैं और वो बहुत ही सुंदर रूप धारण करते हैं। वृंदावन में भगवान को लोग भगवान नहीं मानते हैं और वो सोचते हैं हम में से एक बहुत ही आकर्षक ब्रजवासी है ये। तो भगवान का सौंदर्य जो है त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों में ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं है, तमाल वर्णम। तो साधारणतः भौतिक जगत में जो जो काले प्रवृत्ति के काले वर्णन होता है उतना आकर्षक नहीं माना जाता है, पर भगवान श्याम है पर वे श्याम सुंदर है। तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने। तो अरे भगवान का सावला वर्ण है, श्याम वर्ण है, और उसमें उन्होंने क्या किया है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, और पीतांबर वस्त्र जो है वह एक सूरज की रोशनी के समान दधान चमक रहे हैं। गौरव रामबरम दधाने, गौर गौर मतलब गौरांग महाप्रभु कहते हैं, तो सोना सोने का जैसे वर्ण है, तो उनके जो पीतांबर जो वस्त्र है वह सोने के समान है। तो वो उनका काला वर्ण है, सावला वर्ण है, श्याम वर्ण है, उस पर जो उनके पीत वस्त्र है वो बहुत चमक रहे हैं। और रविकर गौरव रामबरम दधाने वपुरल ककुला वृतान नाब्जम। वपुरल ककुला वृतान, वपुरल उनका जो वपु है वह बहुत आकर्षक है, और आब्जम, आब्जम मतलब वह कमल के समान है। कमल जो होता है वह गंदगी में भी होता है तो बल्कि साफ रहता है। जैसे भगवान इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो वो कभी इस भौतिक जगत की गंदगी से प्रभावित नहीं होते, वो हमेशा दिव्य रहते हैं। और ऐसे भगवान ने क्या किया है, विजय सखे। वह अभी भीष्म हर एक भक्त का भगवान के एक विशेष रूप से रस होता है, संबंध होता है। तो अभी भीष्म पितामह का सबसे तीव्र सबसे मधुर जो स्मृति है वह कुरुक्षेत्र के रणभूमि में है। जब वे युद्ध कर रहे थे पांडवों के खिलाफ, उस समय भगवान विजय सखे, विजय यह अर्जुन का नाम है, सखा मतलब उसके मित्र, तो वह अर्जुन के मित्र मतलब वह पार्थ सारथी बन गए थे, वह अर्जुन का रथ चला रहे हैं। विजय सखे रति, तो ऐसे भगवान के प्रति रति मेरी अनवद्या, अनवद्या मतलब बिना किसी इधर उधर जाए, एक जगह पे रहे मेरी अनुमति। तो वास्तव में हम सब भी इच्छा करते हैं कि हमारी चेतना जो है भगवान की ओर लगी रहे, पर हम सोचते हैं मंदिर में आते थोड़ा भगवान का स्मरण होता है, पर बाहर जाते हैं तो फिर ये इसका विचार आता है, उसका विचार आता है, विचार आता है, और भगवान को हम भूल जाते हैं। तो कभी कभी लगता है हमें कि मैं तो भक्ति कर पाऊँगा या नहीं, शायद भक्ति मेरे बस की बात है ही नहीं है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अगर आप जानते हैं हवाई जहाज जब उड़ता है तो अगर वो उसे किसी को अभी वृंदावन जाना है, कार्तिक महीना चल रहा है, तो यहाँ से बम्बई से अगर दिल्ली तक फ्लाइट लेते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, तो हवाई जहाज सीधा नहीं जाता है। वास्तव में जब हवाई जहाज उड़ रहा है तो 90% समय जो होता है हवाई जहाज गलत दिशा में जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि आसमान में बहुत ही तीव्र हवा होती है, वायु का प्रभाव होता है, बादल होते हैं, वातावरण की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो वो सीधा एक दिशा में जा नहीं सकता है। हवाई जहाज जा रहा है तो तेज वायु आ जाती है तो उसको इधर चला जाता है, फिर तेज वायु आ जाती है इधर चला जाता है, तो 90% समय वो हवाई जहाज वो जिस दिशा में जाना है, जिस गंतव्य पे जाना है, जिस जगह जाना है, उस दिशा में नहीं जा रहा है। फिर भी हवाई जहाज कैसे पहुंच जाता है अपने अपने गंतव्य पे? क्योंकि कोर्स करेक्शन, जैसे ही वो पायलट पायलट होता है समझ जाता है हवाई जहाज गलत दिशा में चला गया, उसको सीधा दिशा में जाना है, चला जाता है कहीं जगह वापस सही रहा, वापस जाता है वापस लाना। सो 90% ऑफ द टाइम एयरप्लेन इज ऑफ ट्रैक, बट स्टिल इट गेट्स टू द डेस्टिनेशन बिकॉज द पायलट गेट्स इट बैक ऑन ट्रैक। तो उसी तरह से हमारा मन जो है गुमराह हो जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, वो होने ही वाला है, मन का स्वभाव है वो। पर जैसे ही समझ में आ जाएगा अरे मन गलत दिशा में चला गया, तो पुनः उसको उसे हताश नहीं होना है, वापस मन को भगवान में लगाना है। कहीं भी चला जाए, जैसे ही समझ गया चला गया लेके आओ वापस, और ऐसे करेंगे तो हम प्रगति करते रहेंगे। तो पिछले श्लोक में भीष्म पितामह ने बताया कि मैं भौतिक चीजों से अभी मेरी चेतना निकाल रहा हूँ, और इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि मेरी चेतना भगवान में लग जाए। विजय सखे रतिर अस्तु मैं नवद्या, उनमें मेरी चेतना अनवद्या, अनवद्या मतलब इधर उधर घूमे बिना उनमें एकाग्रता से लग जाए। और अभी जैसे उनकी चेतना लग जाती है भगवान में, तो भगवान के अलग अलग लीलाओं का वो स्मरण करने लगते हैं। तो ये श्लोक हम एक और बार दोहराएंगे, फिर अगले श्लोक पे जाएंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने वपुरल ककुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे न वद्या विदितुरग्रजो विधुम्र विश्व युधितुरग्रजो विधुम्र विश्व कचिलुलिच्छ्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निषिच्छरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा थोड़ा कठिन श्लोक दोहराने के लिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि विश्व पितामह भगवान पे चिंतन कर रहे हैं, और किस रूप पे चिंतन कर रहे हैं उसका भी वर्णन कर रहे हैं। भगवान का शाश्वत रूप जो है कि वो श्वेत वर्ण पहनते हैं, उनका बड़ा सुंदर रूप है, यह तो सब रसों में है, साक्ष्य रस में हो, माधुर्य रस में, वात्सल्य में, भगवान बड़े सुंदर है, तीनों लोकों में उनका उनके जैसा कोई रूप नहीं है, अप्रतिम सौंदर्य है उनका। पर फिर भी हर एक भक्त का एक विशेष रस होता है भक्त के साथ, तो उसका उन्होंने झलक दिया है पिछले श्लोक में जो बताया विजय सखे, पर वो विजय सखा का और वर्णन कर रहे हैं। क्या होता है यहाँ पे बताते हैं वो कि जब अर्जुन का रथ चला रहे थे युधितुरग रजो, युधितुरग युद्ध ने जो अर्जुन के और बाकी योद्धाओं के घोड़े थे, तो घोड़े जब चलते हैं तो उससे क्या होता है रणभूमि का धूल उड़ जाता है, और रजो विधुम रविश्व उसका जो रज था उसकी जो धूलि थी वो भगवान के चेहरे पे लग गई है। गोपियाँ भी यही बताती हैं कि भगवान जब ग्वालपालों को जब गायों को और गायों को लेके आते हैं जंगल से, तो उनका जो चेहरा है व्रज के रज से आभूषित हो जाता है। तो वह वहाँ पे वह तो वह प्रेम की लीला है, यहाँ पे भीषण प्रकार की लीला है। कच लुलित श्रमवार या अलंकृतास्य, तो साधारणतया कोई व्यक्ति है उसके चेहरे पे धूल लग गई है तो वो आकर्षक नहीं लगता है, पर अलंकृतास्य भगवान के हर एक चीज सुंदर है। अलंकृतास्य वह जो रज है वह धूल है उससे भगवान क्या हो गए अलंकृत हो गए, वह अलंकार के समान है। और उसके साथ साथ श्रमवार्य क्या हो रहा है, अभी जब घोड़ों को नियंत्रित करना है वो कोई आसान काम नहीं है, और खास करके जब रणभूमि में युद्ध चल रहा है तो बड़े चतुराई और तीव्रता से जिस प्रकार से दूसरा व्यक्ति प्रहार कर रहा है, तो कभी घोड़ों को इधर ले जाना, कभी घोड़ों को उधर ले जाना, सारथी को बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके कारण भगवान के सीने पे क्या आ गया है, पसीना आ गया है। श्रमवार्य अलंकृताश्रे, तो पहला क्या है धूली लग गई है, धूली भी सुंदर नहीं होती है, उस पर अगर किसी को पसीना आ गया है तो पसीना सुंदर नहीं होता है। बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री में वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं जो वो स्वेट सप्रेसेंस होते हैं, पसीना को बंद करने के लिए ऐसे मलम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं उससे और सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं। ये है इस पे एक्चुअली लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं कैसे जो पसीना है उसको बंद करें, क्योंकि पसीना सुंदर नहीं होता है। पर भगवान अलंकृतस्य वो धूली है उसे पसीना है वह भी सुंदर है, और उस पर और विशेष क्या है मम निशित शरीर विविद्यमान। जब भीष्म ने तीर छोड़े थे, वह तीर तो अर्जुन की ओर छोड़े थे, पर जब रथ इधर उधर जाता है तेजी से तो जो निशाना है कभी कभी निशाने पे तीर नहीं लगता है, किसी और को तीर लग जाता है। तो जो क्षत्रियों में युद्ध होता है उसके ऐसा नीति होती है कि जो सारथी होते हैं उस पर प्रहार नहीं करना, पर कभी कभी गलती से सारथी को भी तीर लग जाता है। तो भीष्म कह रहे मम निशित शरीर, मेरे शर मतलब तीर, मैंने जो तीर भेजे थे एक निशित, और भीष्म के तीर जो थे बड़े ही धारदार, बहुत ही तेजी थे, तेज थे और बड़े प्रहार से जा रहे थे। शरीर विविद्यमान, तो उनके जो सीने पे तीर लग गए हैं तो उससे घाव हो गई है, और वो घाव क्या है, घाव से खून आ रहा है। तो खून आ रहा है, और अभी अगर मान कल्पना कीजिए कोई माँ है और छोटा सा बालक है, छोटा बालक गिर गया है और चाहे खरोच लग गई है, खून आ रही है, तो कोई माँ कहेगी ये जो खून आ रहा है मेरे पैर के, मेरे बालक के पैर से, वह दृष्टि हमेशा मेरे मन में लगी रहे। तो कोई ऐसा विचार नहीं करेगा। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रकार के भगवान कृष्ण को मैं सदा चिंतन करूं, मैं सदैव चिंतन करूं। क्यों? क्योंकि भगवान अलग अलग प्रकार से रस का आदान प्रदान करते हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि भगवान का शरीर दिव्य है और उसमें खून या पसीना आने की कोई जरूरत नहीं है, पर वह केवल लीला को और रसपूर्ण बनाने के लिए प्रकट किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, जमीन की धूल है, फिर पसीना है, और फिर खून है, और उसके बावजूद भी बहुत सौंदर्य है, इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं अगर भक्त को, भक्त प्रेम से कुछ अर्पण करते हैं तो वो भले ही एक फूलों की माला हो या तीरों की श्रृंखला हो, दोनों भगवान अगर भक्त से, भक्तिभाव से अर्पण किया है तो उसको स्वीकार करते हैं। तो अब भीष्म पितामह का एक विशेष रस था भगवान के साथ। क्या रस था वह? कि वह एक प्रकार का वीर्य रस था, तो उसमें भगवान युद्ध का रस आस्वादन करना चाहते हैं, और इसीलिए जो भक्त होते हैं उनके विरुद्ध जाते हैं, और भक्त विरुद्ध जाकर क्या करते हैं, भगवान को एक विशेष आनंद देते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन देख रहे, भीष्म पितामह देख रहे हैं, वो चिंतन कर रहे हैं कि जो सुंदर रूप है इसमें मैंने इस तरह से भगवान को प्रसन्न किया, मैंने भगवान को इस तरह से प्रसन्न किया। तो इसके यह समझाने के लिए अगर खून आ रहा है तो खून वो कैसे किसी को प्रसन्न कर सकता है, खून तो हम देखना नहीं चाहते साधारणतः। तो इसके लिए जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक बहुत ही रसिक उदाहरण देते हैं, इसको हमें गलत नहीं समझना चाहिए। वह कहते हैं कि तो जो कार्य होता है वो कार्य का उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब कोई नवविवाहित पुरुष स्त्री होते हैं और वह विवाह के बाद एक दूसरे से प्रेम करते हैं, चुंबन करते हैं, तो कभी कभी वो चुंबन करते समय एक दूसरे को काटते हैं, तो तभी खून निकलता है। पर वह जो है वह प्रेम का आदान प्रदान है। तो भले ही खून निकल रहा हो, उसे हमें भगवान के शरीर से खून निकल रहा है, पर वह भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक है। तो भगवान का संबंध पूरा आध्यात्मिक उनके भक्तों के साथ, पर यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि भगवान की सेवा किसी पद्धति किसी की जा सकती है। और यहाँ पे भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं कैसे मैंने भगवान की इस प्रकार से सेवा की, तो इस रूप में भगवान ने मेरी सेवा को स्वीकार किया है, तो मैं इसी रूप का चिंतन करना चाहता हूँ। तो एक और बात दोहराएंगे हम ये, युधिरग्रजो विधुम रविश्व, युधिरग्रजो विधुम रविश्व, कचलुलिच्छ्रमवार्यलंकृतास्ये मम निषिच्छरैर्विद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। तो अभी वह कुरुक्षेत्र में जो अलग अलग लीलाएं हुई हैं उनका स्मरण करने लगेंगे। तो सब तो अभी यह जो लीला है यह आगे का भाग है, यह भीष्म और कृष्ण का जो तीरों का संवाद का आदान प्रदान हुआ महाभारत के युद्ध के 10वें दिन हुआ, तो उसके पहले क्या हुआ यह वर्णन कर रहे हैं। तो अभी वह भगव कुरुक्षेत्र के रणभूमि का और वहां पे भगवदगीता जो बताई गई उसका दो श्लोकों में वर्णन करेंगे, ये श्लोक में और अगले श्लोक में। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परयो बलयोर्थं निवेश्य, स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा, स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा, ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों कौरव और पांडव एक साथ आ गए थे। ये भगवद्गीता के पहले अध्याय का वर्णन है। तो भगवद्गीता का पहला, भगवद्गीता के जो 18 अध्याय है वह महाभारत के भीष्म पर्व में आते हैं। महाभारत में 18 पर्व है। तो पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, जो पांचवा है उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व है। तो 18 दिन के जो युद्ध है उसमें 10 दिन के लिए भीष्म पितामह सेनापति थे कौरव के युद्ध के, फिर अगले 5 दिन के लिए द्रोणाचार्य सेनापति थे। तो सातवां जो पर्व है द्रोण पर्व है। जो आठवां पर्व है उसमें 2 दिन के लिए कर्ण सेनापति थे, वो कर्ण पर्व है। नौवां जो पर्व है उसमें शाल्य 1 दिन, आखिरी 18वें दिन के लिए सेनापति थे, वो शाल्य पर्व है। दसवां जो पर्व है वो सौप्तिक पर्व है, उसमें अश्वत्थामा, सौप्तिक मतलब सोना, सोते हुए सब योद्धाओं का अश्वत्थामा ने बड़ी बेरहमी से वध कर दिया। और फिर उसके बाद में 11वां पर्व जो है स्त्री पर्व है, उसमें गांधारी आदि सब जो स्त्रियां हैं बड़े विलाप करते हैं कि इतनी विशाल मात्रा में लोगों की मृत्यु हो गई है। फिर 12वां पर्व है शांति पर्व, 13वां पर्व है अनुशासन पर्व। शांति और अनुशासन पर्व में जो भीष्म पितामह उपदेश देते हैं, तो अभी ये जो चल रहा है प्रसंग यह शांति पर्व से चल रहा है। तो भीष्म पितामह का प्रवेश महाभारत में पहले पर्व में होता है और सभी पर्वों में उनके थोड़ा सा उल्लेख आता है। सबसे अधिक जो उनकी भूमिका है वह 6ठे पर्व में भीष्म पर्व में, और 12वें और 13वें जो पर्व है शांति और अनुशासन पर्व में। तो यहाँ पे तो भगवद्गीता जो होती है वो कहाँ होती है, वो भीष्म पर्व में है, भीष्म पर्व में 23वें से 40वें अध्याय में। तो क्या हुआ, दोनों सेनाएं जो है एक दूसरे के सामने आ गई है। और फिर क्या हुआ है, यहाँ पे सपदी सखी बचो निशम निमध्य, तो सखी जो उनके सखा थे अर्जुन बचो, उन्होंने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयम मे अच्युता, तो दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापन कर दो। तो उनके वचन के अनुसार निशम निमध्य स्थितवती, और उन्होंने क्या किया निज पर योर बलयो, तो दोनों सेनाओं का जो शक्ति है वो देख सकते थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान इस तरह से लीला करते, अगर कोई भक्त माया में जाने की इच्छा करता है तो भगवान इस तरह से परिस्थिति ला देते हैं उस भक्त के जीवन में कि उसको चुनाव करना पड़ता है, मुझे माया में जाना है या मुझे भक्ति में रहना है। तो जब अक्षना, जब अर्जुन ने इच्छा की कि मैं देखना चाहता हूँ दोनों सेनाओं को, तो भगवान ने क्या किया, भगवान उनका रथ कहीं भी स्थापित कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण दोनों के सामने रख दिया। क्योंकि क्या, अभी यहाँ पे कौरव की सेना है, यहाँ पांडव की सेना है, अर्जुन का रथ कृष्ण लेके आते हैं और बराबर भीष्म और द्रोण के सामने रख देते हैं। क्यों, क्योंकि अर्जुन को चुनाव करना है कि वह अपने रिश्तेदारों के प्रति कार्य करेगा, स्नेह रखेगा, या भगवान की सेवा के लिए स्नेह रखेगा। तो वह चुनाव के लिए बराबर सामने रख दिया। तो फिर क्या हो गया, निज परयोर बलयो रथम निवेश, दोनों का बल वो देख रहे थे। और यहाँ पे भीष्म पितामह जी एक अद्भुत चीज बता रहे हैं, स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा, तो वो कह रहे हैं पर सैनिकायु रक्षणा, जब भगवान ने अपने आंखों से सिर्फ देखा, देखा क्या देखा, उन्होंने आंखों से देखा, तो उससे क्या हो गया, ऋतवती, ऋतवती पार्थ, ऋतवती मतलब क्या हो गया, जो दूसरे पक्ष के जो सैनिक थे उनका आयु तभी खत्म हो गया ऋतवती। तो भगवान ने केवल अपने आंखों से सारे योद्धाओं को मार डाला, केवल आंखों से। अभी अगर महाभारत का इतिहास हम देखेंगे तो महाभारत युद्ध में भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया, भगवान ने किसी को नहीं मारा। तो भीष्म पितामह क्यों बता रहे हैं कि भगवान ने जब देखा ऋतवती परसैनिकायु रक्षणा, परसैनिक आयु, उनका जो आयु थी, परसैनिक मतलब दूसरे योद्धाओं के, दूसरे पक्ष के योद्धाओं के, अक्षणा आंखों से ऋतवती उन्होंने छीन लिया। क्यों, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ। और जो भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र थे वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस जैसे थे, और उन्होंने बताया बाद में युद्ध के बाद में कि क्या हुआ, आपने रणभूमि में क्या देखा, तो बताया कि मैंने एक ही चीज देखा, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सबका वध कर दिया। तो बहुत दिव्य दृष्टि है, सबको शक्ति भगवान ने ही दी थी। तो हम देखते हैं इसके अगले अध्याय में बताया जाएगा कि कैसे अर्जुन की सारी शक्ति जो थी वो चली जाती है जो भगवान से शक्ति नहीं देते हैं। तो इसीलिए भीष्म पितामह बता रहे हैं कि भगवान ने अपने दृष्टि से सबका आयु छीन लिया। अभी सब कौरव का आयु छीन लिया, उसमें भीष्म का भी आयु छीन लिया, तो भीष्म भी उसी पक्ष में है। तो फिर भी वो क्या कह रहे हैं, ऐसे भगवान का मैं चिंतन करना चाहता हूँ, ममास्तु, मेरी मति ऐसे भगवान पे रहते रहने दे। तो भगवान भले कुछ भी करे, भक्त हमेशा जानते हैं कि भगवान मेरे परम कल्याण कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे जब लेके आए बीच में दोनों को, और उन्होंने तभी मेरी जो आयु है उसको खत्म कर दिया, ऐसे भगवान को मैं स्मरण करता हूँ। एक और बार, सपति सखी बचो निशम्य मध्ये, सखी बचो निशम्य मध्ये, निज परयोर बलयोरथम निवेश, परयोर बलयोरथम निवेश, सितवती परसैनिकायु रक्षणा, परसैनिकायु रक्षणा, ऋतवती पर पार्थ सखे रतिर ममास्तु, पार्थ सखे रतिर ममास्तु। अभी अगले श्लोक में वो भगवद्गीता का, अभी दोनों के बीच में आ गए और फिर भगवद्गीता का ज्ञान दिया। तो भगवद्गीता का ज्ञान भगवान ने कैसे दिया, उसका वर्णन अगले श्लोक में करते हैं। वो व्यवहित प्रतनामुखम, व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्ष, प्रतनामुखम निरीक्ष, स्वजन वदाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या, वदाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या, कुमति महरादात्म विद्ययायश, कुमति महरादात्म विद्ययायश, चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु, रति परमस्य तस्य मेस्तु। यहाँ पे बता रहे हैं स्वजन वधा व्यवहित पृथ्ना मुखम निरीक्ष। तो दोनों जो पक्ष एक सामने आ गए, दोनों शत्रुओं को, एक और पांडव है एक और कौरव है, दोनों का चेहरा जब देखा, मुखम निरीक्ष, तो वो सोचने लग गए। वो बताते हैं जब युद्ध, वही भाव जो अभी होता है, वही भाव महाभारत में बाद में वर्णन आता है। नौवे दिन के रात को क्या होता है, नौवे दिन में युद्ध जो होता है, तो फिर भीष्म पितामह इतना भीषण युद्ध करते हैं कि तभी जो युधिष्ठिर महाराज हताश हो जाते हैं, बोलते हैं हम कभी हरा ही नहीं पाएंगे इनको। तो इसीलिए क्या फैसला होता है कि युधिष्ठिर महाराज और पांडव भगवान कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से पूछने जाते हैं कि हम आपका वध कैसे करें। अभी किसी को जाके पूछे मैं आपको कैसे मारूं, कैसे पूछ सकते हैं किसी को, और वैसे ही वो हमसे बहुत प्रिय है तो कैसे पूछ सकते हैं, पर वह क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं तो वो बताते हैं आप शिखंडी को मेरे सामने रखो। तो फिर वैसे ही जब करना होता है, तभी अर्जुन जानते हैं कि अभी अगले दिन मुझे मेरे पितामह का वध करना पड़ेगा, और वो भाव विभोर हो जाते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, कि जब मैं छोटा था तो मैं खेल के आता था, और खेल के आके जब राजमहल में आता था तो भीष्म पितामह की गोदी में बैठ जाता था, और मेरे जो पैर थे वो बाहर के मिट्टी से गंदे होते थे, उनके सारे कपड़ों को गंदा कर देता था, और फिर उनकी लंबी दाढ़ी से खेलता था, और मैं कहता था पिताजी पिताजी, तो वो मेरे बालों को संवारते थे, और वो कहते थे हे बालक, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का पिता हूँ। तो ऐसे ये भीष्म पितामह हैं, उन्होंने एक भी बार मुझसे कोई क्रोध में आके कोई वचन नहीं कहा है, कभी भी मुझसे मेरे लिए कुछ भी अमंगल नहीं चाहा है। मैं कैसे उनके प्रति तीर छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे उनको वध कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। इस तरह से बोल के अर्जुन बड़े भाव विभोर रहते। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, पर भीष्म पितामह ने कौरवों का पक्ष चुना है, इसीलिए आपको ये कर्तव्य करना पड़ेगा। तो अर्जुन उसी तरह से भाव विभोर हो गए। सपदि सखी, वो व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष, मुखम निरीक्ष, वो भीष्म पितामह का चेहरा देखते हैं, द्रोणाचार्य का चेहरा देखते हैं, और सोचते हैं कैसे मैं इनका वध कर सकता हूँ। पर यह जो कमजोरी है उसको भीष्म क्या कहते हैं, कुमतिम, यह कुमति है, यह मति अच्छी नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध में जा रही है मति। कुमतिम अहरा आत्मविद्ययायश, तो ऐसे कुमति का अंत करने के लिए भगवान ने क्या किया, आत्मविद्ययायश, आत्मविद्या दी। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को गोली मारने वाला है, सोचता है कि मुझे गोली नहीं मारनी चाहिए, और दूसरा व्यक्ति आता नहीं उसको गोली मारो तुम, तो जो व्यक्ति ऐसे जिसको गोली लगने वाली है वो सोचता है अरे ये तो क्या है, कितना निष्ठुर व्यक्ति है, उसके प्रति घृणा या नफरत आ जाएगी। पर भगवान क्या, भीष्म क्या बोल रहे हैं कि जिन भगवान ने अर्जुन को बुद्धि दी जिससे कि मेरा वध कर सके, वैसे भगवान के प्रति क्या, चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, उनके चरणों के प्रति मेरी रति आ जाए। तो अभी यहाँ पे यह सब जो है युद्ध के पहले दिन की बात बता रही है। तो आचार्य बताते, कई बार लोग पूछते हैं कि अगर दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गए थे तो फिर वो भगवद गीता पूरे बोलने के लिए समय कैसा था। तो दोनों अगर युद्ध करने आ गए तो वहां पे जो क्षत्रिय होते हैं वो नीति के अनुसार कार्य करते हैं। तो जब कृष्ण और अर्जुन में संवाद हो गया तो भीष्म पितामह ने अपने हाथ ऊपर कर लिया। भीष्म पितामह बोले कि वो बात कर रहे हैं, वो अभी सतर्क नहीं है, सतर्क नहीं है तो आक्रमण नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए रुक जाओ। तो लगभग एक प्रहर में पूरी भगवद गीता बताई गई। भीष्म पितामह के कारण वह सब जो बाकी युद्ध वहां पे रुक गया था, उन्होंने संकेत किया था रुको। तो ऐसे कह रहे ऐसे भगवान के चरणों के प्रति मेरी रति आ जाए। और इसके बाद में अभी जो अगले दो श्लोक है वह दसवें दिन के युद्ध के बारे में बताए गए। यह इस संपूर्ण प्रार्थना का सबसे जो आकर्षक भाग है। तो इसको हम दोहराएंगे फिर अगले इसमें जाएंगे। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन वदा विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महाराधात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु परमस्य तस्य मेस्तु। तो अभी ये 37वां 38वां श्लोक जो है इसमें वह जो भीष्म और भगवान का विशेष रस है उसका वर्णन बताया जा रहा है। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ ऋतचरणद्ययाचलद्गु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कैसे स्वनिगमम अपहाय, भगवान ने अपना निगम अपने वचन जो था उसको त्याग दिया। किस लिए, मत प्रतिज्ञा मृतम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए। तो जो 9वें दिन का युद्ध हुआ उसमें कौरों का बहुत ही बुरी तरह से उनके बहुत से सेनापति मारे गए, उनके बहुत से सैनिक मारे गए और वो एक तरह से हार के तक दरवाजे पे आ गए थे। और तभी भीम और दुर्योधन में बड़ा विशाल युद्ध हुआ था। और तभी भीम और दुर्योधन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन को पूरा घायल कर दिया। तो और वो इतना घायल हो गए दुर्योधन कि दुर्योधन बेहोश होकर वहाँ पे जाने लग गए। और दुर्योधन बेहोश हो गए तो देखकर उनकी सारी सेना भी भागने लग गई। तो फिर यह इसके कारण दुर्योधन जो थे बड़ा ही क्रोधित हो गया, अपमानित और क्रोधित हो गया। क्यों, सबसे पहले बहुत से सैनिकों और सेनापतियों के वध हो गया था, वह स्वयं परास्त हो गया था एक तरह से और उसकी सेना भाग रही थी। और तभी वो गए भीष्म पितामह के पास और दुर्योधन ने कहा कि जब दुर्योधन के सारे शरीर पर घाव आ गए थे तो तुरंत भीष्म पितामह ने वैद्यों को बुलाया और मंत्र बोले और उसके जो घावों को ठीक करने लग गए। और तब तो भीष्म पितामह दुर्योधन के घावों को ठीक कर रहे थे पर तभी दुर्योधन अपने वचनों से भीष्म पितामह के हृदय में घाव कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा कि हे पितामह, बाहर से तो हाथ जोड़े हैं पर अंदर से भाव देखिए क्या आहे पितामह, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि आप पांडवों को हरा नहीं सकते। आपकी तो शक्ति ऐसी है कि देवों और असुरों साथ दोनों साथ में आके सेना बनाएंगे तो भी आप उनको हरा सकते हैं, पर फिर भी आपके सेनापति होते हुए भी पांडव हमारी सेना का ऐसे वध कर रहे हैं जैसे कि कोई अग्नि जो सूखा हुआ लकड़ी है उसको जलाती है, यह कैसे हो सकता है। फिर दुर्योधन रुकता है और फिर भीष्म पितामह में आंखों देखकर बोलता है कि अगर आपको पांडवों से स्नेह है और अगर आप इस परिस्थिति में मुझसे घृणा करते हैं तो आपने मुझे पहले बोलना था। ये अगर पहले बोलते तो मैं कर्ण को सेनापति बना देता था और कर्ण के साथ हम आज तक सारे युद्ध में जीत प्राप्त कर लेते थे। तो यह क्या है? यह सेनापति के लिए बड़ा अपमान है। अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की मैच चल रही है और उसमें भारत हारने लगती है और कोई आके कोई क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल वो आके कैप्टन को बोलता है, अगर हमको पता होता कि आप अच्छी तरह से मैच खेलने वाले नहीं हो तो हम किसी और कैप्टन बना देते थे। तो ये क्या है, पहले से हार रहे उससे दुख हो रहा है और उससे उसके ऊपर क्या है, उसकी जो लॉयल्टी है, उसकी जो प्रामाणिकता है, उस पर अगर संदेह किया जा रहा है तो और दर्द होता है। तो भीष्म पितामह का भी क्रोध आ गया। वो कहने लगे कि अगर मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है आज तक कि जो कृष्ण है वो नारायण है और कोई उनका वध नहीं कर सकता है, और तुम देख नहीं रहे हो मैं और सारी सेना अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे हैं, वो सूत पुत्र और क्या कर सकेगा। तुम्हारा यह स्वभाव है कि जो तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं तुम उनके ही प्रामाणिकता पर संदेह करते हो। मैं तुम्हारी बातें बहुत सुन ली हैं, तो कल मैं पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। और तो ऐसे बोल के भीष्म पितामह ध्यान में चले गए, सामने उन्हें पांच तीर रखे और ध्यान में चले गए। और भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी थे, वो महलों में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वो तपोबल बहुत था उनमें। राधा गिरधारी भगवान की जय, नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो अपना सारा तपोबल जो था उन्होंने वो पांच तीरों में डाल दिया और उन्होंने कहा कि ये पांच तीर कल पांच पांडवों का वध करेंगे। दुर्योधन अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हो गया कि उसको जो उकसाना था भीष्म पितामह का उकसा लिया भी उसने। तो फिर बोला कि वो सोचने लग गया अभी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो उसने कहा कि ये पांच तीर आप मुझे दे दीजिए, मैं बड़े संभाल के रखता हूँ। और यह जब बातचीत हो रही थी उसके पहले जो बाकी जब वहाँ पे जो तंबू होता है जो वहाँ पे जो बाकी सब सेवक होते सबको चले जाने को बोला था, तो इसलिए किसी को पता नहीं था ये, तो मैं रखूँगा मेरे पास में, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर भगवान सब गड़बड़ करते हैं। तो फिर क्या है, भगवान सर्वज्ञ हैं। और बहुत पहले जब गंधर्वों ने, वो विशाल कहाँ बड़ी कहानी है उसमें नहीं जाएंगे, एक बार गंधर्वों ने दुर्योधन को गिरफ्तार कर लिया था और अर्जुन ने तभी उनको छुड़ाया था। तो दुर्योधन ने तभी कहा था, हे अर्जुन अगर भविष्य में तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अभी भगवान दूसरे पक्ष में थे, पांडवों के पक्ष में, उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम्हें याद है वो व्रत, वो अर्जुन दुर्योधन ने था, उसको आज काम में लाना है। तो फिर दुर्योधन के तंबू में कृष्ण और अर्जुन साथ में गए। और कृष्ण तभी दुर्योधन, रात का समय था तो अभी दुर्योधन विश्राम ही कर रहे थे, तभी अर्जुन वहां पे आ गए। तो दुर्योधन आश्चर्य की तरह, अर्जुन आओ आओ, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं राज्य भी दे दूंगा तुम्हें। तो क्या है, अभी दुर्योधन को पता था कि अर्जुन कभी राज्य मांगने नहीं वाला है। तो अर्जुन ने कहा, वह राज्य मांगने का तो समय चला गया, जब कृष्ण आए थे शांतिदूत के समय तभी तुम्हें राज्य देना था, अभी हम युद्ध जीत के राज्य लेंगे, मुझे अभी कुछ और चाहिए। तो क्या चाहिए बोले, तो तुम्हारे पास भीष्म पितामह के पांच तीर है वह दीजिए। तो अभी जैसे दुर्योधन के हृदय पे प्रहार हो गया बिजली का बोले, फिर भी उसके चेहरे पे कुछ भाव नहीं दिखाया, तीर निकाले और दे दिए। और अर्जुन तीर लेके जाने लग गए, तो तभी क्रोध से जल रहे थे दुर्योधन, अर्जुन मुझे एक चीज बताओ, सोचा किस जासूस ने बताया ये, इस जासूस को मैं मार डालूंगा। तो बोले, तुम्हें पांच तीरों के बारे में बताया किसने? तो अर्जुन चल रहे थे, रुके भी नहीं, पीछे भी मुड़े नहीं, सिर्फ आंखें देखा, और कृष्ण ने बताया। कृष्णा, वो कृष्णा लगता है वो भगवान ही है। लगता है वो भगवान ही है, उसके बिना कैसे हो सकता है, कैसे पता चला? सोच में पड़ने लग गए, अगर भगवान है तो भगवान के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए क्या? पर नहीं, अगर वो भगवान होते हैं तो अभी तक कई बार हम जीते भी हैं। अर्जुन का एक पुत्र था इरावन, उसकी मृत्यु हो गई थी, इरावन का हमने वध किया है, तो ये भगवान नहीं है। कोई बात नहीं, कल कुछ और योजना कर देंगे। और फिर अगले दिन, अभी भीष्म पितामह का भाव क्या था, जब उन्होंने ऐसा व्रत लिया था कि मैं पांच पांडवों का वध करूंगा इस पांच तीरों से, तभी उनको पता था कि कृष्ण कभी अपने भक्तों का वध नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ऐसा व्रत लिया क्यों, यह देखने के लिए कि भगवान क्या लीला करते हैं जिससे कि वो अपने भक्तों का संरक्षण करें। तो अगले दिन दुर्योधन का पूरा चेहरा लाल हो गया था, शर्मा गया था। भीष्म पितामह ने कहा पांच तीर दो मुझे। बोले वो तीर तो नहीं है मेरे पास में। तो जब उन्होंने बताया क्या हुआ तो भीष्म पितामह हंसने लग गए। और फिर मैंने कहा कि दुर्योधन का अभी भाव इतना विकृत है, होगा कोई बात नहीं, आप क्या करो दूसरे पांच तीर ले लो, उसमें वो शक्ति आप डाल दो और आप मत कर दो। तो भीष्म पितामह बोले हे बालक ये इतना आसान नहीं है, मैंने मेरे जीवन भर के तपोबल था वह उस पांच तीरों में डाला था, वह तपोबल मैं पुनः प्राप्त नहीं कर सकता अभी। फिर भी मैं आज ऐसे व्रत लेता हूं कि मैं आज अर्जुन का वध करूंगा और अर्जुन को एक ही व्यक्ति आज बचा सकता है, कौन है वो? कृष्ण। अगर कृष्ण अपना शस्त्र उठा के अर्जुन का बचाएंगे तभी ही अर्जुन बचेगा, नहीं तो वो बचेगा नहीं। और फिर उस दसवें दिन ऐसा भीषण युद्ध किया भीष्म पितामह ने कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सका। अर्जुन उनके सामने गए पर अर्जुन भी क्या हो रहा था, अर्जुन स्नेह के कारण पूरे शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे थे और भीष्म पितामह अपने पूरे शक्ति से युद्ध कर रहे थे। भीष्म पितामह कोई नफरत नहीं था, वो भगवान की लीला देखना चाहते थे इसीलिए वो अपने पूरी शक्ति से युद्ध कर रहे थे। और इस तरह से हो रहा था तो भगवान कृष्ण जो थे वो गंभीर हो गए और सोचने लग गए कि भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे हैं कि आज के दिन ही पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा, सारे पांडवों की सेना नष्ट हो जाएगी और अर्जुन की भी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन को भी तीर लग रहे थे और घायल हो गए थे अर्जुन। तो कृष्ण गंभीर होकर विचार करने लग गए और तभी उन्होंने फैसला किया कि यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। स्वनिगमम अपहाय, तो उन्होंने क्या किया, स्वनिगमम, अपने वचन लिया था कि मैं युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपहाय मत प्रतिज्ञा, मत प्रतिज्ञा, मैंने क्या प्रतिज्ञा ली थी भीष्म पितामह कि मैं या तो अर्जुन का वध करूंगा या भगवान कृष्ण को शस्त्र उठाने लगूंगा। ऋतम अधिक, तुम तो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य किया। और क्या ऋतम अवप्लुतो रथस्थ, तो भगवान सारथी के रूप में बैठे थे और वो एकदम कूद गए रथ से और इधर उधर देखने लग गए तो वहां पे क्या था, वहां पे वह एक रथ का पहिया था। द्रुत रथ चरण अव्यया चलत गुर, तो उन्होंने वो रथ का चरण क्या, रथ का पहिया उसको उठा लिया। तो अभी यहाँ पे रथ का पहिया क्यों उठा लिया उन्होंने, क्योंकि भगवान जब विष्णु का रूप है तो उसमें उनका शस्त्र क्या है, सुदर्शन चक्र, तो ये चक्र था। तो अभी फिर अगर उनको चक्र चाहिए था तो खुद के सुदर्शन चक्र को बुला सकते थे, पर यहाँ पे चक्र क्यों नहीं बुलाया, ये चक्र क्यों उठा लिया, कि भगवान अपने भक्त के संरक्षण में इतना चिंतित थे कि वो सुदर्शन चक्र को बुलाने को भूल गए। तो उनको याद तो था कि हाँ चक्र मेरा शस्त्र है, तो फिर क्या किया, चक्र यहाँ पे देखा, चक्र की ओर दौड़े, धृतर चरण दया चलत गुर, और दौड़ने लग गए। हरिरिवहन तुम इभम गतोत्तरिया, हरिरिवहन तुम, जैसे एक शेर होता है वह हाथी को मारने के लिए क्या होता है, दौड़ते हो जाता है और फिर क्या, शेर हाथी के सिर पे प्रहार करता है, उससे कि हाथी का जो सीना है वो थोड़ा कमजोर होता है, माथा जो होता है वहां पे प्रहार करने का। तो जिस तरह से एक हाथी को मारने के लिए शेर जाएगा वैसे हरिर्वहन तुम इभम गतोत्तरिया, तो भगवान की जो उत्तरी थी वह गतोत्तरिया वो नीचे गिर गई, तेज से दौड़ रहे थे तो वो गिर गई। और ऐसे प्रसंग में क्या हुआ आगे वो अगले श्लोक को बता रहे हैं, तो पुनः दोहराते फिर अगले श्लोक को जाएंगे हम। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, गमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ, कर्तुम अवप्लुतो रथस्थ, रुद्रत चरण व्यया चलत गुर, रुद्रत चरण व्यया चलत गुर, हरिर्वहन तुमिभं गतोत्तरिया, तुमिभं गतोत्तरिया, शीत विशी खतो विशीर्ण दमशः, तो विशीर्ण दमशः, शतज परिप्लुत आततायिनो मे, प्रसभम अभिससार मत वधार्थम, सभवतु मे भगवान गतिर मुकुंदा। तो यहां बता रहे शीत विशीक हतो विशीर्ण दमशा, तो उनके तीरों के आज विष्मिता तीर मारे थे उससे भगवान के सीने में खून आ रहा है, दमशा, और फिर क्या हो रहा है, क्षतज परिप्लुत आतताई नौमे, क्षतज परिप्लुत, जो खून आ रहा है, खून से भगवान भी घायल है पर मेरी और आतताई ना, एक आक्रमण के आक्रमक के रूप में दौड़ते हुए आ रहे, जब आ रहे प्रसभम अभिससार मद वधार्थो, मेरे वध करने के लिए, और ऐसे भगवान सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद, तो ऐसे भगवान को मैं स्मरण करता हूँ, मुकुंद ये मुक्तिदायक है, तो देने वाले हैं। तो अभी जब ऐसे ही शिशुपाल का भगवान ने जब वध किया था, बहुत असुरों का वध किया है भगवान ने अपने चक्र से, तो तभी भगवान दौड़ते हुए वो असुर के पास नहीं गए, जहाँ पे था वहीं से चक्र छोड़ा और वो उस असुर का वध हो गया। तो यहाँ पे भगवान दौड़ते हुए कृष्ण भीष्म के पास क्यों गए, क्योंकि भगवान अर्जुन के संरक्षण के लिए इतने चिंतित थे, वे सोच रहे थे निशाना चूक न जाए तो हमें गोली मार दी है, दूर से मारेगी शायद निशाना चूक सकता है, पास में जाएगी तो निशाना अच्छी तरह से लगेगा, इसलिए भगवान ने क्या सोचा, ये भीष्म को मार, मेरे भक्त को इतना इन्होंने घायल किया है, उनको मारना ही है, तो वो दौड़ते हुए जाने लग गए। जब इस तरह से दौड़ते हुए जा रहे थे, तभी अर्जुन ने देखा कि अरे कृष्ण नहीं, कृष्ण दौड़ रहे हैं, तो अर्जुन बड़े दुखी हो गए, सोचने लगे कि मैं पूर्ण उत्साह से युद्ध नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, नहीं वो बोलते भगवान के मान और शान को संरक्षण करना ये भक्त का जिम्मेदारी है, तो भक्त के लिए अगर भगवान अपना वचन तोड़ेंगे तो ये भक्त का उचित नहीं भाई, तो इसलिए सोच वो अर्जुन कूद गए और तेज से दौड़ने लग गए, कृष्ण रुक जाओ मैं युद्ध करूँगा, पूरे भरसक शक्ति से युद्ध करूँगा, पर कृष्ण कुछ सुन ही नहीं रहे थे, कृष्ण की आंखें भीष्म पितामह की ओर थी, और कहते हे भीष्म, जब राजा गलत मार्ग में जाता है तो मंत्री का यह कर्तव्य है कि राजा को सही मार्ग में लाए, तो तुमने धृतराष्ट्र को सही मार्ग में नहीं लाया, इसीलिए तुम ही इस युद्ध के मूल हो, और तुम्हें वध करके मैं युद्ध का अंत कर दूंगा। जब इस तरह से दौड़ते भगवान आ रहे थे, क्रोध से चिल्ला रहे थे, भीष्म पितामह ने बड़े प्रसन्न होकर अपना धनुष्य नीचे रख दिया और कहने लगे हे भगवान, आओ अगर आपके हाथों से मेरा वध हो जाए तो यह मेरे जीवन की परिपूर्णता है, और आप जो कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं, मैंने धृतराष्ट्र को कितना उपदेश दिया और उसने कभी मेरी बात नहीं मानी, आप मेरा वध कर दो और इस भीषण युद्ध का अंत कर दो। तो भगवान दौड़ते हुए जा रहे थे, अर्जुन चिल्ला रहे थे उनके पीछे, पर भगवान कुछ सुन नहीं रहे थे, तो अर्जुन ने चिंता से क्या किया, एक लॉन्ग जंप मार दिया, वो कूद गए और कूद के सीधा भगवान के पैर पे गए और पैर को पकड़ लिया, पर भगवान का क्रोध इतना था कि अर्जुन उनके पैरों में थे फिर भी अर्जुन को घसीटते हुए लेके जा रहे थे, और तभी अर्जुन ने क्या किया, रुक जाओ कृष्ण, चिल्ला रहे थे भगवान कुछ सुन नहीं रहे थे, तो अर्जुन ने अपने बड़े शक्तिशाली क्षत्रिय पैर थे तो पैरों को उठाया और जोर से जमीन पे मारा, जब जमीन पे मारा तो क्या हुआ, जमीन में खड्डा हो गया उससे और उनके पैर उस खड्डे में चले गए, तो पैर अगर खड्डे में गए और हमने पैर किसी को पकड़ लिया है तो क्या वो खींच नहीं पाएगा, तो ऐसा उन्होंने अपने पैरों से खड्डा बना दिया और भगवान दौड़ रहे थे तो वो खड्डा भी बढ़ने लग गया पर कृष्ण रुक जा, तभी भगवान ने देखा अरे अर्जुन यहाँ पे है, अर्जुन जब कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा भगवान आप कृपया युद्ध मत करो, मैं कल भीष्म पितामह का वध कर दूंगा, आप कृपया अपने वचन को मत त्यागो। तभी भगवान कृष्ण शांत हो गए और उन्होंने वो जो रथ चरण पहिया था वो नीचे रख दिया, और उस समय जो था सूर्य का अस्त हो गया, और अस्त हो गया तो सारे रणभूमि में सारे जो सैनिक थे वह यही भाषा कर, कैसे कृष्ण ने रथ उठा लिया और कृष्ण ने शस्त्र मान उठा लिया, भीष्म पितामह जब ये युद्ध उस दिन शाम खत्म हो गया तो विचार कर रहे थे, ये 9वें दिन की शाम की बात है, किस तरह से भगवान ने स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया मुझे मेरे वचन को सत्य करने के लिए, यह कितना भगवान का भक्तवात्सल्य है। तो इस लीला में दो प्रकार का भक्तवात्सल्य दिखाई देता है, वह कौन सा है वह अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। शीत विशीक हतो विशीर्ण दमशः शीक हतो विशीर्ण दमशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमपि ससार मद्वधार्थुम् ससार मद्वधार्थुम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। तो इसमें अगले श्लोक में वह वही जो रूप है भगवान का सिर्फ पार्थ सारथी के रूप में, उस पर वो विष्णु पितामह स्मरण करना चाहते हैं। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे रश्मि तत्श्रिये क्षणीय भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्षहतागतस्वरूपम्। तो विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे, कुटुंब ने कुटुंब मतलब पालन करते हैं परिवार, पर कुटुंब का पालन भी होता है। तो विजय रथ अर्जुन का रथ का जब भगवान पालन कर रहे थे, आत तोत्रे वह जो लगाम लिया था, एक लकड़ी ली थी, और फिर ध्रुत है रश्मिनी जो रस्सी थी वो बड़ी चमक रही थी, जैसे दामोदर में रस्सी है उसी तरह से यहाँ पर भी रस्सी है भगवान के हाथ में चमक रही थी। रश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीय भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे। और वो क्या कहते हैं ऐसे भगवान को, भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर, वो कैसे ऐसे भगवान के प्रति मेरी प्रति हो मुमूर्षोर। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं मुमूर्षुर का ये जो एक ऐसा विशेषण है उसका अर्थ क्या है कि न केवल अभी मेरी मृत्यु आने वाली है, ये अर्थ नहीं है। वो कहते मेरी मृत्यु आ जाए, कहते वो मृत्यु की कामना कर रहे हैं। भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर कि ऐसे भगवान का मैं स्मरण करूं, यम इह निरीक्ष हतागत स्वरूपम, ऐसे रूप का अगर दर्शन करते हुए कोई शरीर त्यागता है स्वरूपम, उसको आध्यात्मिक जगत में अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी अगले श्लोक हम चर्चा नहीं कर पाएंगे अभी, मैं उसके सारांश में क्या है बताता हूँ, और फिर यह श्लोक में जो विष्णु पितामह का देहत्याग की लीला है उसको हम वर्णन करेंगे। तो अगले चार श्लोक में फिर स्मरण करते हैं पहली बार भागवतम में जो अगले श्लोक में गोपियों की लीला का वर्णन आता है, कैसे रास लीला में भगवान के स्मरण में गोपियाँ उन्मत्त हो गई थी। तो विष्णु पितामह कह रहे हैं मैं भी उस तरह से भगवान की लीला का स्मरण करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में भगवान के को कैसे सपति कैसे युधिष्ठिर राजसूय एषाम, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान को अग्र पूजा में कैसे गुणगान हुआ था उसका वर्णन है, उसका स्मरण है। और फिर उसके बाद में जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि यही भगवान एक है पर अनेक रूपों में आते हैं, और वह जो भगवान अनेक रूपों में आते हैं वह इस सुंदर रूप में मेरे सामने आए हैं, सदैव मैं उनका स्मरण करना चाहता हूँ। तमी ममाजम शरीर भाजम, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो अंत में वो कुछ मांगते नहीं है, ये कहते हैं कि भगवान मैं आपका स्मरण कर सकूँ। तब ये जो श्लोक है यह प्रसंग कब हो रहा है, अभी युधिष्ठिर महाराज राज्याभिषेक हो गया है, उसके बाद अगले दिन सुबह युधिष्ठिर महाराज जाते हैं कृष्ण जिस महल में रह रहे हैं, सब पांडव और कृष्ण अलग अलग महल में रहते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि कृष्ण ध्यान में बैठे हुए हैं। तो यह देखकर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हे कृष्ण हे भगवान, तो भगवान तो ध्यान में बैठे हैं वीरासन में जैसे बैठे हुए हैं और प्रसन्न चित्त है, तो हे भगवान आप पे तो सारी दुनिया चिंतन करते हैं, आप किस पे चिंतन कर रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ? तो भगवान बड़े शांति से ध्यान में लगे होते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर चेतना में आते हैं, आंखें खोलते हैं, आंखों में एक विशेष ज्योति जैसे हैं उनके भगवान के, और कहते हैं कि वह व्यक्ति जो मेरा परम भक्त है, वह व्यक्ति जिसको गंगा देवी ने स्वयं जन्म दिया है, वह व्यक्ति जिसने धनुर्विद्या शस्त्रक्रिया परशुराम उस परशुराम से सीखी जिसने 21 बार सारी क्षत्रियों को हरा दिया था, और वो ऐसा शिष्य था जिसने अपने गुरु से परशुराम से 23 दिन तक युद्ध किया और परशुराम ने स्वीकार किया कि मैं तुम्हारा हरा नहीं सकता, वही भीष्म जो क्षत्रिय था पर ब्राह्मण, भीष्म जिनमें क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के गुण हैं, वही भीष्म जो स्वर्ग में गंगा देवी उन्हें ले गई थी और स्वर्ग में उन्होंने बृहस्पति, शुक्राचार्य, व्यासदेव, नारद मुनि और खास करके मार्कंडेय ऋषि, इन सब से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। जहाँ ज्ञान के सागर है, वही भीष्म जब कलिंग नरेश की राजकुमारियाँ थी, उनका स्वयंवर था अम्बा अम्बकालिका का, तभी अकेले सारे ब्रह्मांड सारे विश्व के राजाओं को उन्होंने अकेले हरा दिया। वही भीष्म जो 10 दिन तक कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ऐसा युद्ध कर रहे थे कि कोई उनका सामना नहीं कर सके, वही गंगा पुत्र जो मेरे परम भक्त है, वह एक तीरों के बिस्तर पे मेरा स्मरण कर रहे हैं। और क्योंकि वो मेरा स्मरण कर रहे हैं, मेरा हृदय उनकी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं भी उनका स्मरण कर रहा हूँ। इस तरह से थे जब भगवान ने अपने भक्त के प्रति अपना स्नेह, भक्त के प्रति सराहना व्यक्त की, युधिष्ठिर महाराज की आंखों से आंसू आने लगे। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे कृष्णा, ये तो बड़े मंगल की बात है कि आप भीष्म पितामह का स्मरण कर रहे हो, जरूर हमें भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा, हाँ, जो वे एक ज्ञान और विज्ञान का सागर है और वो कुछ ही समय में अपना शरीर त्याग देंगे, तो उसके पहले हमें उस सागर में डूब के जितना हम ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करते हैं प्राप्त करना चाहिए। और फिर तभी वे सब भीष्म पितामह के तीरों के आसन पे गए, और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे पितामह आँखें बंद किए हुए थे, और जब उन्होंने प्रणाम किया तो आँखें खोली, कृष्ण को देखा, तो हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप ही तीनों लोकों के स्वामी हैं, कृपया आप मुझे इस अंतिम घड़ी में कृपा कीजिए। तो अभी जब कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि आप सब बड़े सुंदर वेशभूषा राज्याभिषेक के सारे लक्षण है वो पहन के जाओ, अभी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, अस्पताल में लास्ट आखिरी बार उसे मिलने जाते हैं, तो कोई स्टाइलिश कपड़े पहन के जाएंगे हम? नहीं जाएंगे। तो फिर भगवान क्यों बता रहे हैं ऐसे पांडवों को, आप पूरे राजा के थाट में आप जाओ। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह की यही इच्छा थी कि मैं जो नेक नीतिपूर्ण जो पांडव है वो कैसे यशस्वी हुए वो देखना चाहता हूँ मैं। वास्तव में शंतनु महाराज जो उनके पिताजी थे, भीष्म पितामह के पिताजी, उन्होंने उनको वर दिया था इच्छा मृत्यु का, आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर स्वीकार कर सकते हो। तो अभी पांडवों के प्रति इतना अत्याचार हुआ, और अगर कोई व्यक्ति असह्य हो जाता है तो जिसके पास शक्ति है और शक्ति होते हुए भी वो शक्ति का उपयोग करने का इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन कोई डॉक्टर है और कोई व्यक्ति है बीमार है, वो मृत्यु होने वाली है, अगर उसको दवाई दी जाए वो ठीक हो जाएगा, पर वो डॉक्टर को पाबंदी दी जाए आपको दवाई नहीं दे सकते आप, तो कितना बेसहाय हो जाएगा। तो उस तरह से युधिष्ठिर महाराज के भीष्म पितामह की परिस्थिति थी कि पांडव इतने नेक थे और उनके प्रति अत्याचार हो रहे थे, भीष्म पितामह के पास शक्ति थी कि वो अत्याचारों को रोक सके, पर फिर भी वे विवश थे। क्यों विवश थे? इसका एक बाह्य कारण है, एक अंतरंग कारण है। बाह्य कारण यह है कि उन्होंने जब अपना ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, तभी साथ साथ उन्होंने एक और व्रत लिया था, ने व्रत लिया था कि न केवल मैं राजा नहीं बनूंगा, न केवल मेरे कोई पुत्र राजा नहीं बनेंगे क्योंकि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, पर साथ साथ जो हस्तिनापुर का राजा है मैं हमेशा उसका सेवक बनके उनका संरक्षण करूंगा। तो जब ये व्रत लिया तब उन्होंने कदापि कल्पना नहीं की होगी कि भविष्य में एक ऐसा क्रूर दुर्योधन जैसे क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति राजा बनेगा और वह इस प्रकार के अत्याचार करेगा। तो वो प्रकृति के प्रभाव के कारण, निसर्ग के प्रभाव के कारण क्या हुआ, वह फंस गए थे। तो ये बाह्य कारण है युद्ध करने के लिए, या क्या हुआ था इसके कारण वह पांडव के खिलाफ चले गए थे, कौरव के पक्ष में आए थे। पर अंतरंग कारण क्या है? भीष्म पितामह एक महाजन है, और महाजन क्या है, वह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन से भक्ति कैसे करना है वो सिखाते हैं। 12 प्रथम महाजन हैं, उनमें से एक भीष्म है। तो वह क्या सिखाते हैं, टू सैक्रिफाइस रेप्यूटेशन फॉर डिवोशन, कैसे भक्ति के लिए खुद की ख्याति है वह भी त्याग करनी चाहिए। तो अभी भीष्म पितामह यह एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, क्षत्रायते। अगर दूसरा कोई व्यक्ति खतरे में है, उसको कोई चोट पहुंचा रहा है, तो उसका रक्षण करना क्षत्रिय कर्तव्य है। तो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, अभी क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, ऐसे परिस्थिति में कोई अबला स्त्री है उसको बचाए। पर भीष्म पितामह कुछ भी नहीं किया, क्यों, उसका भाई और अंतरंग कारण है। अंतरंग कारण यह है कि ये सारी लीला इस तरह से थी, ये दर्शाने के लिए कि वास्तव में इस दुनिया में हमारे कितने भी संरक्षक क्यों ना हो, पर अंत में केवल एक ही संरक्षक है, वह है भगवान। तो यहां पे तो यह शिक्षा दुनिया को दिलाने के लिए भीष्म पितामह शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन जैसे रूप लिया, उन्होंने ऐसे कार्य किया, उन्होंने क्या दिखाया कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी विवश हूं। और उस तरह से जब ये युद्ध में आए तो युद्ध में वो पांडव के खिलाफ क्यों गए, कृष्ण के खिलाफ क्यों गए, वास्तव में भगवान उनके उदाहरण के द्वारा दर्शाना चाहते थे कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी दक्ष क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी गुणवान क्यों ना हो, भीष्म पितामह में तीनों थे, शक्ति थी, दक्षता थी और गुण थे, वो बड़े शक्तिशाली थे, साथ साथ दक्षता थे, उनके जैसा कोई धनुर्विद्या में युद्ध करने वाला नहीं था, और वह गुणवान थे, वह इसे बताया था कि वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, बड़े गुणवान थे। तो शक्ति, दक्षता और गुणवान गुण दोनों तीनों होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के खिलाफ जाता है तो वो व्यक्ति का विनाशी होता है। तो भगवान के खिलाफ जाएगा, कितनी भी शक्ति हो व्यक्ति में, पर बहुत विनाशी होगा उसका। तो भीष्म पितामह यह दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो भगवान के खिलाफ गए, और भगवान ने भी उसका उसका उनको क्या फल दिया, फल बड़ा अद्भुत दिया। तो इसी अध्याय के शुरुआत में क्या आता है, युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे हैं कि कैसे मेरे कारण इतने सारे लोगों की हत्या हो गई। तो भीष्म पितामह अलग अलग कारण बताते हैं समझने के लिए, और अंत में क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि वास्तव में भगवान की योजना के अनुसार आप सहयोग करो, भगवान सबका कल्याण करेंगे। अब कैसे कल्याण होगा वो पता नहीं है हमें, पर जरूर कल्याण हो जाएगा। तो वह इसके पहले एक श्लोक बोलते हैं, बताते हैं, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्ने स्युत्तजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। वह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं कि हे देखो युधिष्ठिर, पश्य भूपानुकंपितं, देखिए भूप, भूप मतलब धरती का पालन करने वाले राजा, अनुकंपितम, देखिए किस प्रकार के अनुकंपा उन्होंने मुझे दिखाई है, क्या क्या अनुकंपा है, यन्मे सुस्तजत साक्षात, जब मैं शरीर त्याग रहा हूँ, कृष्णो दर्शनमागतः, कृष्ण स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। तो यह परिपूर्णता है, एकांत भक्तेषु, मैंने एकांत भाव से भगवान की भक्ति की जीवन भर, देखो कितनी कृपा भगवान ने मुझे दी है, उसी तरह से तुम भी भक्ति करो, तुम्हें भी कृपा मिलेगी। तो इस तरह से अभी कृष्ण भीष्म जो है तीरों के शैया पे है, कृष्ण और पांडव वहाँ पे आ गए हैं, और कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, आप कहो, बोलते हैं कि आप तो ज्ञान का सागर है, आप कृपया मुझे उपदेश दीजिए कैसे मैं राज्य कर सकता हूँ। तो तभी भीष्म कहते हैं, हे कृष्ण, तुम तो जगत गुरु हो, जगत गुरु के सामने एक शिष्य क्या कह सकता है, बोले उपदेश देना है तो आप उपदेश दीजिए, और उसके ऊपर से मैं तो बड़ा ही अशक्त हो गया हूँ, तीरों से बड़ा दर्द हो रहा है मुझे, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मेरी कोई स्मरण शक्ति भी नहीं है, मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ, आप उपदेश दीजिए और मैं भी युधिष्ठिर के हाथ का श्रवण करूँगा। तभी कृष्ण अपना हाथ ऊपर करते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे भीष्म, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अभी से मृत्यु तक तुम्हें किसी भी तीर से कदापि दर्द नहीं होगा। यह जो तीरों का बिस्तर है वह एक कोमल बिस्तर के समान हो जाएगा, और जैसे युवावस्था में तुम्हारी बुद्धि और स्मृति थी, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि और स्मृति हो जाएगी, और जैसे क्षत्रिय एक सभा में शक्ति से वचन बोलते हैं, उसी प्रकार की शक्ति तुम्हारे वाणी में आ जाएगी, और तुम सबको उपदेश दोगे। जब ऐसे कृष्ण आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा आसमान से जो देवता है वो फूलों की वर्षा करते हैं, और उसके बाद में एक दिन नहीं दो दिन नहीं सुबह से शाम तक 54 दिनों तक भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं, और 54 दिनों तक उपदेश देते हैं। वास्तव में महाभारत में दो बड़े ही विशाल संवाद है, एक संवाद है युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद जो कि वन पर्व में है, और यह जो है भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद यह शांति पर्व और अनुशासन पर्व में है। और फिर उसके बाद में यह श्लोक भीष्म पितामह बोलते हैं, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। मैं मेरी चेतना अब इस अलग अलग विषयों से निकालना चाहता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, मेरी चेतना भगवान में एकाग्र करता हूँ, और भगवान के चेहरे को दर्शन करते हुए भगवान का अंतरंग स्मरण करते हुए भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग करके भगवत धाम लौट जाते हैं। और भीष्म पितामह यह एक आदर्श है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है और जीवन त्यागना है। और हम अगर प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में यही दर्शाया, प्रभुपाद जी वृंदावन में थे वृद्धावस्था में 69 साल की अवस्था में, पर उन्होंने क्या किया, वृंदावन छोड़ दिया सारे विश्व भर में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। पर वास्तव में प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ा नहीं, प्रभुपाद जी वृंदावन अपने साथ लेके गए। हम भक्त को वृंदावन से बाहर निकाल सकते हैं, पर वृंदावन को भक्त से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। भक्त के हृदय में हमेशा वृंदावन रहता है, और प्रभुपाद जी जहाँ भी गए वहाँ पे उन्होंने वृंदावन निर्माण किया। यहाँ पे भी राधा गिरधारी मंदिर है, यह भी वृंदावन के समान ही है। और यहाँ पे हमें हम सबको भगवान ने भगवान और प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान का स्मरण करने का मौका है। और भगवान की योजना देखिए, इतनी सेवा भगवान की प्रभुपाद जी ने बराबर मृत्यु के समय भगवान ने योजना बनाई कि पुनः वृंदावन में प्रभुपाद जी आ गए, और भक्तों के सानिध्य में भगवान वृंदावन धाम में कार्तिक माह में बड़े ही मंगल दिन प्रभुपाद जी ने भगवत धाम लौट गए। तो उस तरह से हम प्रभुपाद जी की कृपा से भीष्म पितामह की उदाहरण के प्रेरणा से हम भी जीवन भर भक्ति करके इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवान में चेतना लगा के भगवत धाम लौट सकते हैं। श्री भीष्म पितामह की, भीष्म स्तुति की, श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्णा, बहुत बड़ा सौभाग्य है चरण प्रभु ने जीवन की सार्थकता के बारे में शरीर सबको छोड़ना है, लेकिन किस प्रकार छोड़ना चाहिए, ये कला